ओम शांति, ओम शांति। आज पहली फरवरी है और आज तो अव्यक्त बाप दादा से मिलने का विशेष दिन है। अपने से बहुत से वरदान प्राप्त करने का भी दिन है, बाबा के साथ अनुभव करने का भी विशेष दिन है। तो आज प्यारे बाबा ने मुरली के अंदर बच्चों को बहुत सी बातें सेवा के लिए, धारणा के लिए, पुरुषार्थ के लिए कई सुंदर सुंदर पॉइंट्स दी हैं। तो बाबा ने कहा है कि पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ा है, क्या कहेंगे? पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा, सभी क्या कहेंगे? पुरुषार्थ बड़ा। लेकिन बाबा ने उसमें एक एडिशन की है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ में भी योग बड़ा है। पुरुषार्थ करते हैं, योग नहीं लगाते हैं तो फिर प्राप्ति नहीं होती है। कई बच्चे ऐसे कहते हम तो बाबा के बन गए हैं, हम तो बाबा के हैं ना, योग क्यों लगाएं? बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बाबा के बने हैं तो योग तो लगाना ही है, योग से ही पुरुषार्थ ठीक चलेगा और तब जाकर के प्रारब्ध प्राप्त होगी। दूसरी बात बाबा ने कही कि जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं जो ज्ञान दिया हे अर्जुन, यहाँ भी बाबा कहते हे अर्जुन, एक अर्जुन का नाम क्यों लेते हैं? बाबा ने कहा अर्जुन का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि यह पक्का है, सर्टन है, इसका पुरुषार्थ भी सर्टन है और ये ऊंच पद पाने वाला है, जैसे ब्रह्मा और सरस्वती इन दोनों का सर्टन है, इसलिए नाम एक का लिया जाता है। फिर बाबा ने साथ में ये भी कहा कि इतनी सेवा करते हैं, जैसे कि कुमारका दादी हैं, जनक दादी हैं, उनका भी बाबा ने नाम लिया है। फिर बाबा ने विशेष सतयुग की दुनिया की भी याद दिलाई है कि सतयुग में तुम्हारे महल कैसे होंगे, सोने की खानियां होंगी। ऐसा नहीं कि सोने का पहाड़ होगा, वहां खानियां होंगी, आप जाकर के सोना ले सकेंगे। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है पहली फरवरी 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठी बच्ची तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। मीठी बच्ची तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते हो। आज का प्रश्न है तुम्हारा योग बल कौन सा कमाल करता है, तुम्हारा योग बल कौन सा कमाल करता है? इसका उत्तर है योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाती हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो, पांच तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से ये शरीर भी सतो प्रधान होते हैं, नहीं तो तमो प्रधान तत्व हैं तो शरीर भी तमो प्रधान है, कुछ ना कुछ बीमारी लग जाती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान तत्वों से ये शरीर भी सतो प्रधान होते हैं, वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते। यहाँ दुनिया में कई देशों में फल बड़े बड़े लगाते हैं, लेकिन उनका टेस्ट नहीं होता है। बाबा कहते वहाँ के फल रियल फल और बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। ओम शांति, जब ओम शांति कहा जाता है तो क्या होना चाहिए? बाबा कहते बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्म ही शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, कहानी सुनाते हैं ना कि सन्यासी भी कहते एक रानी का हार था गले में पड़ा हुआ, तो कहाँ कहाँ जाके ढूंढती थी। तो इस पर सन्यासी एक उदाहरण देते हैं, इस पर सन्यासी भी कहते हैं कि शांति तो तुम्हारे गले का हार है, गले में पड़ा हुआ है, शांति को बाहर क्यों ढूंढते हो? शांति तो अंदर है, बाहर क्यों ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है, इस शरीर में पार्ट बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? बाबा कहते शांति में बैठ जाएगी परम धाम में, तो कर्म तो उसको करना है, लेकिन आत्मा को आकर के शरीर लेना पड़ता है कर्म करने के लिए। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में जब आत्माएं रहती हैं वहाँ शरीर है नहीं। ये कोई भी सन्यासी आदि समझते नहीं है कि हम आत्मा हैं, शांति धाम में रहने वाली हैं। वो ज्ञान देंगे लेकिन हम आत्मिक स्थिति में रहे वो तो नहीं बताते ना कि हम शांति धाम में रहने वाले हैं, वो भी नहीं बताते हैं। बच्चों को समझाया गया है कि शांति धाम हमारा देश है, फिर हम सुख धाम में आकर पार्ट बजाते हैं, फिर द्वापर से रावण राज्य होता है दुख धाम में। ये 84 जन्मों की कहानी है, भगवानों वाच्य है ना, अर्जुन प्रेत भगवानों वाच्य सुनाते ना गीता में हर बार अर्जुन प्रेत, तो बाबा कहते हैं भगवानों वाच्य है ना अर्जुन प्रति, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। बाबा ने आकर के, श्री बाबा ने भी ब्रह्मा को बताया कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं ही आकर के बताता हूँ। भगवानों वाच्य है ना अर्जुन प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हो? बाबा कहते एक को क्यों कहते हो? क्योंकि एक की गारंटी, कितने भी बच्चे बाबा के पास आए एक के साथ कुछ की तो गारंटी रही, लेकिन बाबा कहते इसकी तो गारंटी है, इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, इनको ही कहते हैं। ये भी बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, ये जो सब बच्चे हैं सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं है। बाबा भी कहते हैं ना 84 जन्म है, थोड़ा अंतर तो आएगा, कोई तो उसी समय आते हैं, कोई थोड़े टाइम के बाद आते हैं। तो बाबा कहते ये भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं, कोई बीच में आएंगे और कोई अंत में आएंगे, इनकी तो सर्टन है। किसकी? ब्रह्मा बाबा और मम्मा, बाबा मम्मा दोनों का सर्टन है और दादियों का भी सर्टन है, और बाकी तो सब आएंगे 84 जन्म वाले। यहाँ जो 84 जन्म में आने वाले हाथ तो खड़ा करो, हैं सब है ना 84 वाले, ठीक है सर्टन है आपके भी, इनकी तो सर्टन है। इनको कहते हैं हे बच्चे, तो ये अर्जुन हुआ ना रथ पर बैठा है ना, बच्चे खुद भी समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे। सर्विस ही नहीं करते हैं तो सत्युग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे? राज बता दिया, सेवा नहीं करेंगे तो सत्युग की नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे, थोड़ा अंतर हो जाएगा। इनकी तकदीर कहाँ जन्म कैसे लेंगे? सर्विस ही नहीं करते हैं तो सत्युग नई दुनिया में कैसे आएंगे? इनकी तकदीर कहाँ है? पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाए, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आएंगे, जो थोड़ा 5-6 जन्म बाद में आएंगे, अंतर तो हो जाएगा ना, तो उनके लिए पुराना घर होता जाएगा। मैं इनके लिए कहता हूँ जिनके लिए तुमको भी सर्टन है। अब शिव बाबा कह रहे, मैं कह रहा हूँ किसके लिए कह रहा हूँ, जिनके लिए तुम बच्चों को भी पक्का है, किसके लिए, ब्रह्मा सरस्वती इनके लिए पक्का ही है, बाबा भी उनके लिए बता रहे हैं। मैं उनके लिए कहता हूँ जिनके लिए तुमको भी सर्टन है, तुम भी समझ सकते हो। मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं, कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी हैं जो 84 जन्म लेते, बाबा के साथ रहकर इतनी सेवा की है, तो बाबा कहते ये भी 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे, ये भी बाबा राज बता रहे हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो कुछ तो अंतर हो जाएगा ना, जो सर्विस नहीं करते जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं हम तो ना पास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे, स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापिस लौटते हैं ना। अब दूसरा राज बताया, स्कूल में भी ऐसा होता है, कोई बाद में भी आता है, जब खड़े होते हैं वो दौड़ी पहन करके निशाने पर पहुंच भी सकता है, तो बाबा कहते पीछे आने वाले भी आगे जा सकते हैं। सब एक रस तो हो न सके, रेस में जरा पाव इंच का भी फर्क पड़ता। अब जो फर्स्ट नंबर में आते एक एक सेकंड का अंतर पड़ता है, हालांकि फर्स्ट में आए तो भी एक सेकंड का अंतर पड़ता है ना, तो प्लस में आ जाता है। आए फर्स्ट में, सेकंड का अंतर पड़ा लेकिन आ जाता है प्लस में, तो प्लस में आ जाता है। ये भी अश्व रेस है, अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी ये जो दिखाते हैं, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया, ये सब बातें है नहीं, ना दक्ष प्रजा पिता है, ना कोई यज्ञ रचा। स्थूल में कोई यज्ञ ऐसा नहीं रचा है, लेकिन अलौकिक यज्ञ तो रचा है ना, ना कोई दक्ष प्रजा पिता है, ना कोई यज्ञ रचा है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं, उनका नाम ही कथा है। सत्संग में जाते हैं ना तो क्या बोलते, हम कथा सुनने जा रहे हैं, तो क्या वो कोई भक्ति थोड़ी करने जाते, कहते हम कथा सुनने जा रहे हैं, मिस कथा है, सुनाने वाला भी कथा ही सुनाता है, बाकी वही कथा बार बार सुनाता है, बाकी उनको ये पता नहीं कि पढ़ना है या कुछ प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनका नाम ही कथा है, बहुत कथाएं सुनते हैं, तुम तो ये पढ़ते हो। उसमें और यहाँ अंतर क्या है, यहाँ पढ़ाई है और वहाँ कथा सुनते हैं। तुम तो ये पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़ी कहेंगे, अब ये थोड़ी कहेंगे हम कथा सुन रहे हैं, ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में अभ्यास भी करना पड़ता है, पढ़ाई को कथा थोड़ी कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं तो एम एंड ऑब्जेक्ट भी रहती है, हमको इस पढ़ाई से ये नौकरी मिलेगी, लौकिक में रहता ना ये पढ़ेंगे, पढ़ करके ये स्टेटस मिलेगा, ये बनना है, तो वो पढ़ाई करते ना। तो बाबा कहते हैं स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो हमको ये नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है। क्या बोला बाबा, कभी कभी कहते ना देही अभिमानी बनना। आज बाबा ने क्या कहा कि देही अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, खास याद करना होता है, ऐसे नहीं मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं तो बाबा का बन गया हूँ, बच्चा हूँ, मैं क्यों याद करूँ। बाबा कहते ऐसे नहीं, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ ना, फिर याद क्यों करूँ। कई ऐसे लाडले बच्चे भी हैं, बाबा को पता रहता है, क्या करते बस बाबा हमको याद करे, बाबा तो याद करता ही है, तुम याद करोगे तब तो बाबा की याद मिलेगी, खुद ही याद नहीं करते, बाबा याद कर रहे हैं तो याद पहुंचेगी भी नहीं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ ना, फिर याद क्यों करूं। नहीं, याद करना है, अपने को स्टूडेंट समझकर हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे। क्या करना है? एक तो आत्मा समझना है, दूसरा हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे। ये भी भूल जाते हैं, शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। ये भी याद नहीं रहता, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते। बाबा कहते ये भी उनको याद नहीं रहता है। शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं, ये भी याद नहीं रहता है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है। अब क्या पूछना है? बाबा बता रहे हैं कितना समय बाप की याद ठहरती है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। जास्ती टाइम तो किसमें जाता है? बाबा रिजल्ट बता रहे, जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में जाता है। ये याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की भी बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं ये किसको भी पता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से एक भी पाप कटेगा नहीं, फाइनल। श्री कृष्ण को याद करो, किसी को याद करो, तो बाबा कहते एक भी पाप कटेगा नहीं, पाप कटेंगे केवल बाप की याद से। अब श्री कृष्ण को याद करने से एक भी पाप कटेगा नहीं, क्योंकि वह तो शरीरधारी है, पांच तत्वों का ये शरीर बना हुआ है। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया। श्री कृष्ण तो छोड़ो, किसी के भी शरीर को याद किया तो बाबा क्या कहते हैं, गोया मिट्टी को याद किया। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया, पांच तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है ना, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो मुझ बाप को याद करो। कहते भी हो हे पतित पावन, तो वह एक हुआ ना, पतित पावन सबको थोड़ी कहते, एक को ही कहते ना, तो बाबा कहते वो एक हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कौन है। भगवान रचयिता तो एक होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे तुम सब हमारे बच्चे हो। शुरू में प्रदर्शनी होती थी ना, तो बाबा बहुत युक्तियां बताते थे। बाबा कहते उनको पूछो भगवान एक है। अच्छा, अगर कोई भी कहता सर्वव्यापी है तो कोई ऐसा थोड़ी कहेगा तुम सारे मेरे बच्चे हो। परमात्मा तो ये कहता ना कि तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो। ऐसे कोई नहीं कहेगा तुम सब हमारे बच्चे हो। या तो कहेंगे तत् तुम, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। हम भी भगवान, तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। वो साधु संत होते ना, कई होते, बस एक ही बात करते हैं, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, बस बोलते रहते हैं। वास्तव में समझते नहीं है, लड़ते झगड़ते भी रहेंगे, कुछ कुछ बातें भी करते रहेंगे और बोलते रहते हैं। कहते हम भी भगवान, तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते हैं। तुम हमारे बच्चे हो ये तो कोई कह ना सके। बाबा पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। उस समय बाबा समझाने के लिए बहुत पॉइंट्स देते थे। बाबा कहते उनको बताओ कि अगर भगवान हो तुम ये तो नहीं कहोगे ना, तुम सब हमारे बच्चे हो। ऐसे कोई कह ना सके मेरे लाडले बच्चे। अगर कोई कहे किसी को तो लौकिक में क्या करेगा, किसी के बच्चे को कौन तू मेरा बच्चा है, तो क्या करे, उसको इतना गुस्सा आएगा कि मेरे बच्चे को ये कहता मेरा बच्चा है, तो उसको क्या करेगा, थप्पड़ लगा देगा। तो बाबा कहते हैं अगर कोई को कहो मेरे लाडले बच्चों तो थप्पड़ मार दे। ये भी एक परलौकिक बाप ही कह सकते हैं। और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे न सके, 84 की सीढ़ी का राज भी कोई समझा न सके, ऐसी सीढ़ी ना कोई बना सकता है, ना कोई रास्ता बता सकता है। बाबा ने जो दिया केवल बाबा ही समझा सकते ना। तो बाबा की तो 84 की सीढ़ी का राज भी कोई समझा ना सके सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम है शिव। ये तो मनुष्यों ने अथा नाम रख दिए हैं। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबुल नाथ कहते, बबुल नाथ मीन्स कांटों को फूल बनाने वाला नाम रख दिया। कहाँ हर स्टेट में जाएंगे, हर शहर में जाएंगे, शिव बाबा का मंदिर मिलेगा, नाम अलग अलग मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे बॉम्बे में बबुल नाथ कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम समझते हो कि कांटों को फूल बनाने वाला है शिव बाबा। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे। शिव बाबा के नामों की लिस्ट निकालो ना, उसकी कोई गिनती नहीं है। जब गुजरात में चले जाओ पता नहीं कितने नाम होंगे। देवियों के भी अलग अलग नाम है। दूसरी स्टेट में जाओ तो अलग अलग नाम होते हैं। तो बाबा कहते हैं भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, उसमें भी बाबा किसको समझाते हैं, उसमें भी बाबा माताओं को जास्ती आगे करते। माताएं हाथ खड़ा करो, देखो कितनी माताएं बैठी, माताओं के लिए ताली तो बजा दो। हाँ, कितनी अच्छी है ना, बाबा की बहुत सेवा करती हैं, बहुत प्यार से करती हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती रखते हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है, क्योंकि बाप आए है ना, बाबा आए, यज्ञ की स्थापना की, मातृशक्ति को आगे बढ़ाया, तब से लेकर के माताओं को और फीमेल्स को भी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ाई। और आजकल तो बहनें हर फील्ड के अंदर सबसे आगे जा रही हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है, क्योंकि बाप आए हैं। बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है, सच की बेड़ी हिले डुले, परंतु डूबती नहीं। सच की नहीं है, डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। सच की बेड़ी हिले डुले लेकिन डूबे नहीं। तो तुम सच्चे हो और नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो, बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएंगी। कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ के लिए, एक झूठ के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता। तो बाबा किसे जो झूठ बोलते सब खत्म हो जाएंगे। तुम भी कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो, तुम फिर दूसरे जन्म में जाकर के राज्य करेंगे। ये बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो। ये बाबा ना मिलता तो बाबा कहते अगर ये बाबा ना मिलता तो तुम कुछ भी नहीं जान सकते। बाबा मिला और बाबा ने ये सब समझाया तब तो जान सके ना। तो बाबा कहते हैं ये बाबा ना मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे। अभी जाना है। ये है युधिष्ठिर। कौन? ब्रह्मा बाबा। ये है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। आज युधिष्ठिर का अर्थ क्या है? खुद तो खड़ा ही है लेकिन सबको युद्ध के मैदान में। अगर बाबा उमंग उत्साह नहीं भरते तो सब ढीले हो जाते। बाबा पुरुषार्थ में कभी भी ढीले नहीं हुए। बाबा हर समय हर कार्य खुद करते थे, चाहे छोटा काम हो चाहे स्थूल कार्य हो। कोई भी स्थूल कार्य होता था ना, बाबा खड़े हो जाते थे। कई बार बाबा ना बच्चों को कहते थे ये कार्य है, तो बच्चे कहते बाबा इतना बड़ा कार्य है कैसे होगा। बाबा कहते अच्छा कोई बात नहीं। बाबा जाके खड़े हो जाते, सब बच्चे दौड़े दौड़े आते थे, वो सारा काम फटाफट हो जाता था। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये युद्ध के मैदान में खड़ा है, तुम सबको युद्ध के मैदान में खड़ा भी करता है। ये है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। ये है नॉन वायलेंस, अहिंसक। मनुष्य हिंसा समय लेते हैं, मारा मारी को। बाप कहते हैं पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी है, इसलिए काम महाशत्रु कहा है, इन पर ही विजय पानी है। मूल बात ही है काम विकार की, पतित माना ही विकारी, विकारी महा विकारी कहा जाता है पतित बनने वाले को और जो विकार में जाते हैं। क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये विकारी, जो पतित बनता है विकार में जाता है उसको कहेंगे विकार, क्रोध वाला तो जो सामने दिखाई दे जाता है उसको विकारी नहीं कहेंगे, है विकार बहुत बड़ा लेकिन उसको विकारी नहीं कहेंगे, थोड़ा फर्क है, क्रोध वाला तो सामने दिखाई देता है ना। तो बाबा कहते हैं क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे ये विकारी है, क्रोधी को कहेंगे कहेंगे बड़ा क्रोधी है, बड़ा गुस्से वाला, क्रोधी को क्रोधी और लोभी को लोभी कहेंगे। लोभी कम नहीं है, लोभ होता है ना, इधर से चीज उठाई जिधर चले, कहां से हाथ उठाया, इधर जो चीज दिखाई दी चुपचाप उठाया और खा लिया, पता भी नहीं रहेगा, चुपचाप उठाया थैले में डाल दिया। तो बाबा के टाइम पर बहुत ध्यान रखते थे, क्या होता था पता पड़ जाता था, चीज अच्छी एक खाई तो दूसरा मन करता, अभी क्या करेंगे, तो इधर से चलते इधर से चलते खुद खाया फिर दूसरे को कहेंगे अच्छा तुम्हारी जो चीज है मुझे दे दो, नहीं मिला तो इसका उठाया उसका उठाया। तो बाबा कहते लोभ जो ये भी कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी आदत है जो कि आत्मा को इधर से उधर घुमाती रहती है। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं लोभी को लोभी कहेंगे, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है, देवताएं निर्लोभी निर्मोही और निर्विकारी। देवताएं क्या हैं? देवताएं निर्लोभी निर्मोही निर्विकारी हैं, वह कभी विकार में जाते ही नहीं हैं। तुमको कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे, फिर बाबा के तुमको क्या जवाब दोगे? बाबा के तुमको पूछो तुम ही तो कहते हो ना कि वो निर्विकारी है, फिर क्यों पूछते हो? बाबा उसका उत्तर दे रहे हैं, वो कहते विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे, तो बाबा कहते उनको ही तुम बोलो, तुम ही तो कहते हो देवता निर्विकारी है, उनको तो निर्विकारी मानते हो ना, वह है ही वॉइसलेस दुनिया, द्वापर कलयुग है विशेष दुनिया, खुद को विकारी और देवताओं को निर्विकारी कहते हो ना। तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं, इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से ये पद पाया है, फिर पा रहे हैं, हम भी देवी देवता थे, हमने कल्प पहले ऐसे राज्य पाया था, जो गवाया अब फिर राज्य पा रहे हैं, यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी रहे। हम ही कल्प पहले वाले थे, राज्य पाया था और राज्य फिर गवाया फिर राज्य पा रहे हैं। बाबा कहते चक्कर का घुमाते रहेंगे तो खुशी रहेगी, यही चिंतन बुद्धि में रहे तो खुशी रहेगी, परंतु माया ये स्मृति भुला देती है। बाबा ये भी जानते हैं कौन सी बात, तुम स्थाई याद में रह नहीं सकेंगे। बाबा को पता है कि बीच बीच में माया भी आ जाती, कई बार बच्चे बाबा को चाट लेते, बाबा मैं 8 घंटा कंटिन्यू बाबा को याद किया, बाबा कहते चाट को इधर रख दो, सच नहीं है, क्योंकि पता है कुछ ना कुछ बीच में बातें आती हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा जानते तुम स्थाई याद में रह नहीं सकेंगे, तुम बच्चे अडोल बन याद करो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापिस चली जाए, परंतु नहीं। अब फिर दूसरी बात बता रहे बाबा बहुत राजयुग कि ऐसी अवस्था वाला पहला नंबर का कौन है, वो है ब्रह्मा बाबा, पहली अवस्था ऐसी ऊंच हाईएस्ट स्टेज वाला है, बाकी तो कोई जा नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापिस चली जाए, परंतु नहीं, पहले नंबर तो ये जाने वाला है। अब श्री बाबा ने ये बात पहले बता दी थी, लेकिन किसको मालूम थोड़ी था कि बाबा इतना जल्दी अव्यक्त बन जाएंगे, ये चला भी जाएगा। तो बाबा ने तो बता ही दिया था। तो बाबा बता रहे हैं, पहले नंबर में तो ये जाने वाला है, फिर है श्री बाबा की बारात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगा कर ले जाती, पहले जमाने में करते थे। बारात के साथ माताएं चलती थी, मटका है उसमें ज्योति जग रही है। तो बाबा इसका राज बता रहे हैं, ये निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है, बाकी हमारी ज्योति जगाई है। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो, योग से तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान से धन मिलता है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। योग बल से तुम खास भारत और सारे विश्व को पवित्र बनाते, योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हैं। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकते। बाबा को हमेशा कन्याओं पर नाज रहता था। बाबा कहते थे अगर मैं कन्या होता ना, मैं झट से सरेंडर हो जाता। तो कन्याओं को थोड़ा क्या होता था, ऐसे ऐसे दिल होता है ना, पता नहीं चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे। तो कन्याएं तो क्या नहीं कर सकती, अभी तो कन्याएं भी बहुत सेवा कर रही हैं, फिर भी कई लौकिक में है, कोई लौकिक और अलौकिक डबल करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती हैं। सर्विस कर ऊंच पद पाना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, कम नहीं है जीवन को हीरे जैसा बनाना, बाबा कहते कम नहीं है। गाया जाता है फॉलो फादर मदर, सी मदर एंड अनन्य ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फॉलो मदर फादर और सी मदर फादर, और किसको करना है, जो हमारे महारथी दादियां हैं और सीनियर्स अनन्य मुख्य हैं, उनको देखना है कि उन्होंने कैसे पुरुषार्थ किया। बाबा को तो साकार बाबा को तो शुरू में देखा, फिर उसके बाद हमारे सामने एग्जाम्पल कौन रहे, दादियां, दादी जानकी, दादी प्रकाश मणि, गुलजार दादी, मनोहर दादी, सब चंद्रमणि दादी, ये सब दादियां हमारे सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल रहे कि इतना बल भरते थे हर एक के अंदर, कितना अच्छा बल भरते थे। तो बाबा कहते हैं सी अनन्य जो मुख्य है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सी मदर फादर एंड अनन्य ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि तुमको दो फादर हैं, लौकिक और परलौकिक, इसमें बड़ा कौन, बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना, वर्षा उनसे मिलना चाहिए। अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। भगवानों वाचे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व का मालिक बने। राजयोग सिखला रहे हैं अभी और जाकर के बनेंगे विश्व का मालिक। भगवानों वाचे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर दूसरे जन्म में तुम विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कलप कलप भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं, तुम ही विश्व के मालिक बनते हो। इस पढ़ाई से उस पढ़ाई से क्या मिलेगा, भल पढ़ लो कितना भी पढ़ लो, पढ़ते पढ़ते क्या होगा, एक स्टेटस मिल जाएगा, पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी। आज डिग्री वाले भी अब नौकरी के लिए कहाँ कहाँ भटकते हैं, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन ये पढ़ाई जो है सोर्स ऑफ इनकम है। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा, यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्म के लिए। उस पढ़ाई में और इस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है, ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है, ये एक में तीन है, वहां पर तीनों अलग अलग होते हैं। तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा, गुरु का वर्षा सब देते हैं। बाप, टीचर, गुरु भी यही है। तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा, गुरु का वर्षा सब देते हैं। अब बाप कहते हैं, देह सहित सबको भूलना है, आप मोए मर गई दुनिया। खुद ही मर गए, उसको क्या पता क्या हो रहा है। तो इसके लिए कहावत है कि आप मोए मर गई दुनिया। बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने तो बाकी किसको याद करेंगे। बाबा के बन गए, नई जो पुरानी दुनिया से बाबा के बन गए तो बाबा कहते फिर क्यों याद करते हो। बाप के बने तो बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने बाकी किसको याद करेंगे। दूसरों को देखते हुए भी जैसे कि देखना नहीं है, पार्ट में भी आते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि अब हमको घर जाना है। कोई भी पार्ट बजाते ड्रामा में या फिल्म में, उनको पता है कि हम तो पार्ट बजा रहे हैं, हमारा घर तो अलग है ना। पार्ट पूरा होने का होता है तो बुद्धि में रहता है कि अब हमको घर जाना है। पार्ट में आते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि अब हमको घर जाना है, फिर यहाँ आकर के पार्ट बजाना है। ये भी बुद्धि में रहे तो बहुत खुशी रहे। बच्चों को देह भान छोड़ देना चाहिए, ये पुरानी चीज यहाँ छोड़नी है, अब वापिस जाना है। नाटक पूरा होता है, पुरानी सृष्टि को आग लग रही है। अंधे की औलाद अंधे अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। मनुष्य तो समझेंगे ये सोया हुआ मनुष्य दिखाया। शुरू शुरू में जो प्रदर्शनी थी ना, तो एक कुंभकर्ण मनुष्य को कुंभकर्ण बना करके, मनुष्य का चित्र कुंभकर्ण का बना करके वो सुला देते हैं, और वो चित्र में दिखाया कैसे भी विनाश हो रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है, उसको गंगा जल डाल रहे हैं। तो कहेंगे तो मनुष्य का बनाया। बाबा कहते वास्तव में तो ये अज्ञानता की बात है, और अभी तो कुंभकर्ण का मॉडल कितना बड़ा बनाया है। पीस पार्क में कुंभकर्ण का बहुत बड़ा मॉडल है, और उसको देखते है ना तो परिवार के परिवार जाते ना तो माताएं क्या करेंगी, बच्चों को बोलेंगी कुंभकर्ण मत बनना, और बच्चे फिर बड़ों को कहेंगे आप कुंभकर्ण मत बनना, क्योंकि वो भी उनको बहुत एक प्रेरणा तो देता ही है। फिर भी जिनकी बुद्धि में होगा ज्ञान लेने का, ज्ञान भी लेते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो समझेंगे तो सोया हुआ मनुष्य दिखाया, परंतु ये अज्ञान नींद की बात, मनुष्य का चित्र दिया है लेकिन बाबा कहते अज्ञान नींद की बात है। जिससे तुम जगाते हो ज्ञान अर्थात दिन सतयुग, अज्ञान अर्थात रात कलयुग। ये भी बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या शादी करती हैं तो मात पिता सास ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूलना पड़े। ऐसे भी युगल हैं जो सन्यासियों को दिखाते हैं कि हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते। अभी आपको बताएं गुजरात के अंदर तो ये सेवा की धमाल कर दी है, कितने सेंटर्स पर इन्होंने जो पवित्र युगल हैं, युगल युगल ज्ञान में चलते, एक है पवित्र युगल शादी किया लेकिन बिल्कुल नहीं, एक वो युगल है जो शादी किए ज्ञान में बाद में आए हैं। तो गुजरात के कई सेंटर्स पर युगलों के सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखे, उसमें हर कार्यक्रम के अंदर हर जगह जहाँ प्रोग्राम रखे, कहाँ पर सन्यासियों को बुलाया, कहाँ पर बड़े बड़े लोगों को बुलाया, उनको बताया कैसे इस ज्ञान में, ज्ञान से इतनी ताकत मिलती है, घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र रहते हैं। तो इन्होंने गुजरात के अंदर एक नई लहर करा दी है और जगह जगह ये प्रोग्राम रखे, बहुत ही सक्सेसफुल जा रहे हैं। इसके द्वारा भी सबके पास ये संदेश पहुंचता है कि इस ज्ञान से क्या नहीं हो सकता है, हम भी अपना जीवन पवित्र बना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तो जो सन्यासियों को दिखाते हैं कि हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते। ऐसे ऐसे एक बार दादी, बड़ी दादी ने उन बाल ब्रह्मचारी युगलों का कार्यक्रम यहाँ पर रखा था, जो कि कारने अकारने किन्हीं कारणों से उनको इस बंधन में बंधना पड़ा, लेकिन ज्ञान के पक्के रहे, उन सब युगलों को बुलाया था और महामल्लेश्वर का प्रोग्राम था उस समय, इन युगलों को बुलाया था, उन्होंने अपने अपने अनुभव सुनाए थे, तो उनको भी इतना अच्छा अनुभव होता था कि बाबा ने ये जो ज्ञान दिया इतना मजबूत है जो हर एक की अवस्था को इतना शक्तिशाली बना देता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी युगल हैं जो सन्यासियों को दिखाते हैं, हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते हैं, ज्ञान तलवार बीच में है, बाप का फरमान है पवित्र रहना है। देखो रमेश उषा है, ये भी तो बाल ब्रह्मचारी है ना, रमेश उषा है, कभी भी पतित नहीं बने हैं। ये डर है अगर हम पतित बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई खत्म हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा, कितनी सेवा करते, कितने सेंटर भी संभालते हुए, सारा कारोबार देखते हुए भी एक एग्जाम्पल रहे ना, दिवाला मार देंगे। ऐसे कोई कोई फेल भी हो पड़ते हैं, जितने भी बाल ब्रह्मचारी थे अधिकतर सब पास हुए, कोई एकाध केस होगा, ऐसे कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्वी विवाह का नाम तो है ना, तुम जानते हो पवित्र रहने से बहुत ऊंच पद मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है, योग बल से कर्म इंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उड़ाए, सोने का पहाड़ स्थापन करते। अब बाबा कहते योग बल से क्या कर देते, इस पुराने पहाड़ को उठा करके सोने का पहाड़ स्थापन करते। मनुष्य थोड़ी समझते हैं, वह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं, ये तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एज बनाते हैं। ऐसे नहीं हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, बाबा कहते ऐसा नहीं कि सतयुग में हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, वहां पर तो सोने की खानियां होंगी। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, वहां तो सोने की खानियां भरतू हो जाएंगी। पांच तत्व सतो प्रधान है तो फल भी अच्छा देते हैं, सतो प्रधान तत्वों से ये शरीर भी सतो प्रधान होते हैं, वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। बाबा सतयुग दुनिया में ले जा रहे और वहां के फल और यहाँ के फल में कितना अंतर है, वहां के फल भी बड़े बड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं। नाम ही है स्वर्ग, तो अपने को आत्म समझ बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे, देह अभिमान में आने से विकार की चेष्टा होती है, योगी कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। अब बाबा पक्का करा रहे, कल की मुरली में भी बाबा ने कितना ध्यान खिंचवाया कि अगर संकल्प भी जाता है तो वो भी एक पाप है। तो बाबा कहते हैं कल तो बाबा ने कितना जोरदार बच्चों को ध्यान खिंचवाया है, तो बाबा कहते हैं योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल है परंतु योग नहीं तो गिर पड़ेगा, ये भी बाबा राज बता रहे। ज्ञान में अच्छा है, योग नहीं है, फिर अवस्था भी ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो इसलिए बाबा कहते दोनों का बैलेंस रखना है। ज्ञान तो है परंतु योगी नहीं होगा तो फिर गिर पड़ेगा, परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा, वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। योग ज्ञान और योग में बाबा कहते कौन सा बड़ा, योग बड़ा। जैसे प्रारब्ध और पुरुषार्थ में कहते हैं ना पुरुषार्थ बड़ा, ऐसे बाबा कहते इसमें कहेंगे योग बड़ा। योग से ही पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे, मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा, कितना भी पढ़ लो थोड़ी नॉलेज आ जाएगी, बाकी कुछ और तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तो बाबा के बच्चे क्या कहेंगे, हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे, मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा, मास में क्या कमाई होगी, जो भी कमाई होती है थोड़ा टाइम चलता फिर कमी महसूस होती है ना, तो बाबा कहते मास में क्या कमाई होगी, तुम एक एक रतन धारण करते हो। ज्ञान जो है एक एक रतन के तरह धारण करने जैसा है, ये तुम एक एक रतन धारण करते हो, ये है लाखों रुपए के। एक एक रतन की वैल्यू क्या है, लाखों रुपए की है। वहां तो पैसे की गिनती नहीं की जाती, अनगिनत धन होता है, सबको अपनी अपनी खेतियां आदि होती हैं, वहां खेतियां हैं, कोई धन की जरूरत ही नहीं है, वहां तो पैसे की बात ही नहीं है, अथाह धन है। अब सब कुछ अपना सामान है, सब कुछ लेने देने के आपस में शेयर करते हैं, एक दूसरे को देंगे, उसका ये नहीं है कि इतना दिया तो तुम इसका रिटर्न दो, तो वहां तो सब कुछ है, कुछ सोचने की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये तुम एक एक रतन धारण करते हो, ये है लाखों रुपए का, वहां पैसे की गिनती नहीं की जाती, अनगिनत धन होता है, सबको अपनी अपनी खेतियां आदि होती, सबको अनाज इतना है, इतना अनाज है, किसको मांगने की जरूरत ही नहीं है। अब बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं, ये है एम एंड ऑब्जेक्ट, पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है, राजधानी स्थापन हो रही है ना, इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई, इनकी प्रारब्ध को जान गए तो बाकी क्या चाहिए, इन्होंने कैसे राज्य लिया क्या किया, तो इनकी प्रारब्ध को जान गए तो बाबा कहते अभी फिर आपको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई, इनके प्रारब्ध को जान गए तो बाकी क्या चाहिए। अभी तुम जानते हो कल 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं, बाबा हर कल्प के 5000 वर्ष बाद आते हैं। अभी तुम जानते हो कल्प 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है तो बाबा क्या कहे, खाना नहीं खाएंगे हैं। दादी जानकी अपना अनुभव सुनाती है, जैसे बाबा ने सुनाया बताया। दादी जानकी जब रहती थी बॉम्बे में, सुबह सुबह जाकर के क्लास के बाद थैला उठाया और चली जाती थी बगीचे के अंदर, बगीचे में बैठ जाती थी, वहां कई बुजुर्ग लोग घूमने के लिए और कई आते थे, सबको ज्ञान सुनाती थी। तो उसने बाबा का ये सेंटेंस इतना पक्का कर लिया, बोला जब तक इसको ज्ञान नहीं सुनाऊंगी, सेवा नहीं करूंगी, तब तक खाऊंगी नहीं। वो चली जाती थी बगीचे में, पैदल चली जाती थी और वहां ज्ञान सुना करके फिर कितनों को बाबा का बनाकर आती, फिर आकर के खाना नाश्ता करती थी। तो दादियों ने इतना त्याग तपस्या किया है और अब तो बाबा ने बच्चों को हर तरह से भरपूर कर ही दिया है। तो बाबा कहते हैं तो अभी तुम जानते हो कल 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है, खाना नहीं खाएंगे, इतना उल्लास उमंग हो तब ऊंच पद पा सकते। बाबा ने, बच्चों ने इतना, दादियों ने इतना किया है, अब हम लोगों को भी बाबा तो कराते हैं लेकिन उन जैसा तो हम लोग नहीं करते ना, तो बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि इतनी सेवा करो तब ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ईश्वरी सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है, अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है, देवताओं जैसा निर्लोभी निर्मोही निरअहंकारी बनना है। वरदान, तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव, जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, जब बाबा की सीजन होती है तो उसके लिए सारा प्रबंध पहले से किया जाता है, कौन आएंगे, क्या करेंगे, कौन सा ग्रुप आएगा, सेवा करेगा। तो बाबा कहते हैं, जिस स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने के अंतिम सीजन आने वाले। बाबा के बच्चों को रिसीव करते हैं, उनकी पूरी तैयारी करते हैं, पूरा प्रबंध करते हैं, तो ऐसी आत्माओं की जो गति सदगति की सीजन आएगी, तो उसके लिए भी अपने पास ज्ञान का योग का बल इकट्ठा करना पड़ेगा ना। ऐसी ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है, आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो, हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बनकर चलो। स्लोगन, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां भी जी हजूर करेंगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां भी जी हजूर करेंगी। आज का अव्यक्त इशारा, अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो तो एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है। एक प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। अच्छा, ओम शांति शांति। अच्छा, सभी भाई बहने बैठे रहे, पहले तो ये पूछना है, वह भाई बहने जो पांडव वन में ठहरे हैं, शांतिवन से एक दिन के लिए वो नहीं, जो पांडव वन में ठहरे हैं और उन्होंने सौगात नहीं लिए, बात करा करें, पांडव वन में ठहरे हैं। अच्छा, तो अभी योग पूरा होगा तो हिस्ट्री हॉल में जाना है, वहां पर आपको सौगात मिलेगी। और वो डबल विदेशी भाई बहने जिन्होंने सौगात नहीं ली है, वो भी वहां पर जाएंगे सब प्रोग्राम सुनने के बाद। अच्छा, जो भाई बहने शांतिवन से आए एक रात के लिए, हाथ खड़ा करें। अच्छा, आप सभी को तो आए हैं, ठीक है। आप सभी मुरली कहाँ सुनेंगे, यहाँ सुनेंगे या नीचे सुनेंगे? शांतिवन से आए हुए भाई बहने हाथ खड़ा करो। आज की अव्यक्त मुरली कहाँ सुनेंगे, यहाँ सुनेंगे या नीचे जाके सुनेंगे? जो नीचे जाएंगे वो हाथ खड़ा करो। सब नीचे जाएंगे अभी नाश्ता करके। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, जो भी भाई बहने शांतिवन से आए या जो भी पार्टी के भाई बहने, सबका सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, वहां पर ही आप सबको करना है। नीचे तो स्थान नहीं जो आप खड़े हो जाए, कई बार थाली लेके खड़े रहते हैं, तो ये रॉयल्टी नहीं है, रॉयल वाक के बच्चे हो तो सबको ऊपर ही बड़े डाइनिंग हॉल में जाकर के नाश्ता करना है, नीचे थाली लेकर के किसी को भी खड़े नहीं रहना है, और खड़े खड़े कभी भी नाश्ता या भोजन नहीं करना है। बाबा हमेशा कहते हैं रॉयल्टी से रहो और ऊपर आराम से बैठ करके नाश्ता करो, इस बात का ध्यान रखना है। और आज तो बाबा का दिन है, बाबा के दिन का कार्यक्रम किस प्रकार से रहता है, डबल विदेशी भाई बहनों का तो क्लास के बाद बताएंगे। वैसे भी आप सबको मालूम है 3 बजे से डायमंड हॉल की गेट खोल देते हैं, और इस ग्रुप में तो बहुत से भाई बहने आए हुए हैं, और वह मधुबन निवासी और हॉस्पिटल निवासी जिनके पास अपना साधन है वह अवश्य ही अव्यक्त मुरली के लिए नीचे जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी पांडव भवन के आंगन में और ओम शांति भवन में। मेनली जो यहाँ मुरली सुनते हैं वह ओम शांति भवन में, यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है शाम को 5 से 6 बजे तक सूर्य भाई का क्लास, 6 से 6:15 बजे प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराया जाता है, और 6:30 बजे अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली को हम देखते हैं, ट्रांसमिशन देखते हुए सुनते भी हैं। अब इसके बाद हम सभी बाबा की याद में बैठे रहेंगे, आफ्टर नाउ विल सिट इन बाबा'स रिमेम्बरेंस, एंड आफ्टर दैट ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर रिक्वेस्टेड टू स्टे बैक। टुडेज प्रोग्राम विल बी अनाउंस्ड as well as the directions for Baba's meeting will also be announced, so everyone should make sure that keep sitting here till you get all the directions and information about today's program. अभी हम सभी बाबा की याद में बैठते हैं, उसके बाद सभी डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे।